हैप्पी दिवाली अंजलि।
तुम्हें भी दिवाली मुबारक हो नरेन। और दोस्तों आप सभी को भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं।
दोस्तों आज जब चलें शहर की ओर की 22वीं कड़ी है और जैसा कि दीपावली का मौका है तो आज हम भी बात करेंगे त्योहारों की ही।
जी हाँ दोस्तों, त्योहारों का मौसम चल रहा है। पहले गणेश चतुर्थी, फिर ईद, फिर दशहरा और अब आया है रोशनी का त्योहार यानी के दीपावली।
लेकिन दोस्तों त्योहार के इस अवसर पर हमारे बहुत सारे प्रवासी भाई ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से दूर शहर में हैं। हम उनके परिवार की कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि वो शहर में रहकर भी हर्षोल्लास के साथ त्योहार कैसे मनाएं।
दोस्तों इसी के साथ हम ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम जब चले शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। वो कार्यक्रम जिसके जरिए आपको प्रवास से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं।
दोस्तों कार्यक्रम में दी जाने वाली जानकारियों के अलावा यदि आपके मन में प्रवास से जुड़ा कोई सवाल है या फिर आप कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9197176782। और आइए अब सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने सुना कि छोटी छोटी बातों को लेकर चंदर और मधु का फोन पर झगड़ा होता है। शहर के सरकारी अस्पताल का डॉक्टर हरेंद्र की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताता है कि उसका लिवर खराब हो गया है और अगर उसने पीना नहीं छोड़ा तो उसकी जान भी जा सकती है। उधर फूलमती मधु को चंदर के फोन के बारे में उसे न बताने पर डांटती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
अरे चंदर, अरे भैया मुझे लगता है कि आटा कम पड़ेगा, थोड़ा और आटा लगाना पड़ेगा है?
मैं अभी लगा देता हूँ बलराम भैया।
अरे धनबाद।
हाँ भैया।
अरे वो 3 नंबर और 5 नंबर पे कपड़ा मार दे।
जी गजेंद्र भैया अभी मार देता हूँ।
ये किसका नंबर है?
हेलो हेलो
हेलो जी, क्या चंदर से बात हो सकती है?
आप कौन बोल रही है?
जी कल्पना बोल रही हूँ लक्ष्मी नगर से।
अच्छा अच्छा, आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी चंदर को फोन देता हूँ। चंदर।
हाँ भैया।
अरे तेरे लिए किसी कल्पना का फोन है लक्ष्मी नगर से।
ओ कल्पना।
कौन है भैया?
अरे क्या गजेंद्र, तुम भी यार लाओ इधर दो। हाँ हेलो।
हाँ चंदर, मैं कल्पना बोल रही हूँ।
जी कल्पना जी बोलिए, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और इस बार दिवाली किसके साथ मना रहे हो, दोस्तों के साथ या फिर गाँव में?
घर तो जाना नहीं हो पाएगा, यहीं पर मनानी पड़ेगी।
अच्छा तो एक काम करना, दिवाली वाले दिन घर आ जाना, खाना भी मेरे यहाँ पर ही खा लेना।
अरे वाह, मैं भी सोच ही रहा था कि आ जाऊँ।
ठीक है तो फिर अब मैं रखती हूँ।
जी ठीक है।
यार चंदर तेरी बीवी तो गांव में है, तो ये कौन है गुरु?
अरे दोस्त है यार।
अरे वाह, अच्छा तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार।
अरे नहीं नहीं गजेंद्र।
क्या बात है भैया, शहर में एक और गाँव में।
अरे बलराम भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। जब दिल्ली में नया नया आया था तो कल्पना जी ने बहुत सहारा दिया।
आए हाय सहारा दोस्त।
अरे तुम लोग भी यार।
चल चल अब शर्माने की जरूरत नहीं है, चल अब आटा लगा। हाँ
अभी लगा देता हूँ भैया, ये ले तेरा फोन गज्जू।
बिल्लो रानी कहो तो भी जानते।
अरे इस बुढ़ापे में कष्ट देने से अच्छा है कि तू मुझे उठा ही ले।
माँ जी।
मधु। हाँ बोल, क्या बात है?
माँ जी मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं माँ के पास नहीं गई, अगर आप कहो तो इस बार दिवाली पर मायके हुआ।
अरे मायके जाकर क्या करेगी, वैसे भी बुआरी कुछ फैसले घर की हालात को देख कर लिए जाते हैं। अभी घर पर कितना काम है, ऊपर से मीरा का भी बच्चा होने वाला है और तू ऐसे में मायके जाने की सोच रही है।
पर माँ वो।
अरे बुआरी अब मेरी उम्र नहीं है ये सब भाग दौड़ करने की, ऊपर से ये पैर भी मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं। बस जब तक थोड़ा बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तभी तक थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ।
जी
एक काम कर, अभी रहने दे, फिर कभी चले जाना मायके। और हाँ अभी थोड़ी देर में साहूकार के यहाँ चले जाना।
जी माँ जी।
चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी, पता नहीं वो तुझे पहचानेगा भी कि नहीं।
हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मेरा अब क्या होगा?
अरे क्या हुआ आपको?
मुझे माफ कर दो मीरा।
अरे नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, और वैसे भी आपकी इन गलतियों की वजह से मुझे कम आपको ज्यादा परेशानी हो रही है।
नहीं मीरा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और तुम सब कुछ चुपचाप सहती रही।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ अगर आप थोड़ी जल्दी मेरी बात मान लेते तो शायद आपकी तबीयत इतनी खराब नहीं होती, पर अब भी अगर आप ये बोतल का साथ छोड़ दें तो शायद आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
मीरा तुम सही थी, मैं ही गलत था, तुमने तो बार बार मुझे पीने के लिए रोका, मुझे समझाया कि मेरी ये पीने की आदत मुझे बीमार कर सकती है, लेकिन मैं ही पागल था जो तुम्हारी बात नहीं मानी, और अब मेरी ये हालत।
सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, अब बस ये डॉक्टर की दवाइयाँ खाने में आनाकानी मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
ये सब कुछ मेरे पीने की आदत की वजह से हुआ है, न मुझे ये पीने की आदत लगती, न मैं एक बुरा इंसान बनता और न मैं आज बीमार होता। मीरा मीरा मैं कसम खाता हूँ, मैं आज से और अभी से पीना छोड़ दूंगा, ये सारी बोतलें इन बोतलों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है।
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम इन्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ, शायद ये दिवाली मेरी जिंदगी में खुशियों का नया सवेरा लेकर आएगी।
तीन चार पांच और ये छह, ये ले देवीलाल, पूरे 6,000 हैं, लेकिन 6 महीने का वक्त ही दे रहा हूँ, पूरा पैसा वापस चाहिए मुझे, सूद समेत। हाँ
जी सेठ जी। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, नमस्ते।
नमस्ते।
नमस्ते सेठ जी।
अरे आओ आओ बाऊजी, आओ आओ, कैसी हो?
मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप कैसे हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो।
हाँ ठीक है।
अरे ये साथ में कौन है?
ये चंदर की बुआरी है।
अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटी?
जी ठीक हूँ।
और घर पर सब कैसे?
जी सब ठीक हैं।
सुना है कि चंदर दिल्ली गया?
हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है।
अरे तो कुछ पैसे वैसे भेजे उसने? वो क्या है कि दरअसल उस पर कुछ पैसा निकल रहा है जो उसने दुकान के लिए लिया था, तो मुझे लगा कि तुम वही लेकर आई हो।
नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बल्कि कुछ और पैसों की उम्मीद लेकर आपके पास आई थी।
कुछ और पैसे? पहले पहला पैसा दो, बाद में और पैसे उधार लेने की सोचना। हाँ
अरे तो सेठ जी लौटा देंगे, आपके पैसे कोई मार थोड़े ही रहे, जैसे ही चंदर पैसे भेजेगा मैं लौटा दूंगी।
अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं उस पर तो मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, पहला पैसा कुछ दिन में वापस करने का बोला था है? और आप खुद ही दिल्ली भाग गया, मक्कार कहीं का।
सेठ जी वो शहर पैसे कमाने गए हैं, और मक्कारी उन्होंने नहीं आपने की है, जितने रुपए के वो जेवर थे उतने तो पैसे आपने दिए ही नहीं।
अरे बहुजी ये तेरी बुआरी क्या कह रही है?
मधु चुप कर,
मैं सही कह रही हूँ माँ, इन्होंने मेरे पति के सीधेपन का फायदा उठाया है, और अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी।
अरे पुलिस? पुलिस के पास क्यों?
तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी कि तुम लोगों के सीधेपन का फायदा उठाते हो, और उन्हें उनकी चीजों के बदले में बहुत कम पैसा देते हो, और ब्याज तो बहुत ज्यादा लेते हो।
बारी चुप कर।
नहीं माँ जी, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ता है, ये तो लोगों की मजबूरी का फायदा ही उठाते रहेंगे।
ये पुलिस वुलिस की धमकी मत दे मुझे, बहुजी समझाओ अपनी बुआरी को कि यहाँ ऐसे ही चलता है, ये ले 1,000 रुपए, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। हाँ
ठीक है सेठ जी, चल बुआरी।
अरे बाप रे, ये चंदर की बुआरी थी या झांसी की रानी, ये तो सचमुच मुझे जेल करवा देती।
ये मम्मी बाहर आओ जल्दी, देखो कितना मजा आ रहा है। ये
अरे गुड़िया कैसे हो बेटा?
मैं ठीक हूँ अंकल।
गुड़िया गुड़िया कौन है बाहर, किससे बातें कर रही हो?
मम्मी अंकल आए हैं।
अरे चंदर तुम कब आए?
जी बस अभी अभी आया।
अरे आओ ना अंदर आओ।
जी
बैठो चंदर।
हाँ कल्पना जी ये कुछ मिठाइयाँ और खिलौने हैं गुड़िया के लिए।
अरे चंदर इनकी क्या जरूरत थी?
नहीं नहीं आज त्योहार का दिन है, और वैसे भी जब घर पर होता था तो हर बार नकुल और नैना के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आता था।
ये नकुल और नैना?
जी मेरे बड़े भैजी के बच्चे हैं।
अच्छा अच्छा, वैसे चंदर तुम्हारी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क तो है नहीं, तो ये आप और जी कहना छोड़ दो।
जी मेरा मतलब है
और घर पर बातें? घर पर सब कैसे हैं?
जी सब ठीक है, बस हरेंद्र भैजी की तबीयत थोड़ी खराब है।
और तुम्हारी बुआरी?
जी वो ठीक है, थोड़ी नादान है और इस वजह से अब तो बस जैसे झगड़े ही हो रहे हैं।
मतलब?
अब क्या कहूँ, जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ आने की जिद पकड़ बैठी, बस इसी बात पर नाराज भी हो गई है।
तो वो शहर आना चाहती है?
हाँ, दरअसल वो आगे पढ़ना चाहती है, और आपको तो पता ही है घर की बुआरी होते हुए ये सब तो मुमकिन नहीं है ना। और मैं यहाँ काम करने आया हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, ऊपर से उसका आगे पढ़ाई करने को लेकर रोना, मैं तो बस पूरी तरह पिस गया हूँ इन सबके बीच।
अरे चंदर, अब शादी की है तो जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ेंगी ना, घर की और घरवाली की भी, क्यों?
मैं समझता हूँ कल्पना, लेकिन घर के हालात इसकी इजाजत नहीं देते। अब गाँव के माहौल से भी तुम अच्छी तरह परिचित हो।
वो सब तो ठीक है, पर फिर भी।
चलो ये बात छोड़ो, बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं?
हाँ पूछो।
तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की?
बस ऐसे ही, उनकी मौत के बाद गुड़िया ही मेरे जीने की वजह थी। उनकी पेंशन और कुछ पैसे इधर उधर से इकट्ठा करके ये मकान ले लिया, सिर पर छत आ गई। अब जिंदगी में गुड़िया के अलावा है ही कौन? मेरी दुनिया तो इसी से शुरू होती है और इसी पर खत्म हो जाती है। बस ये अच्छे से पढ़ लिख जाए, समझूंगी कि जीना सफल हो गया। खैर, हम भी किन बातों में उलझ गए। ये बताओ, तुम्हारी नई नौकरी कैसी चल रही है?
जी ठीक चल रही है, सभी लोग अच्छे हैं, मेरी काफी मदद भी करते हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है?
वो भी ठीक चल रहा है, अभी एक और सिलाई का ऑर्डर मिला है।
अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
अरे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, मैं खाना लगाती हूँ।
हाँ ठीक है।
अंजलि, चंदर जैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे प्रवासी श्रोता हैं जो अपने परिवार से दूर शहर में रह रहे हैं, और अक्सर त्योहार के अवसर पर उनको भी अपने परिवार की याद सताती होगी।
बिल्कुल नरेन, चलो क्यों ना आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करें कि उन्हें अपने परिवार के साथ गांव में त्योहार मनाने और शहर में त्योहार मनाने में कितना अंतर नजर आता है।
एक्चुअली बॉम्बे और गांव में जो बनाने का त्यौहार बनाने का जो तरीका है वो बहुत बहुत डिफरेंस है, अलग अलग है। उसमें जैसे बॉम्बे में क्या है, इस समय गणपति का त्यौहार है, लेकिन हमारे गांव में कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। घर में हम ब्राह्मणों को बुला करके उसमें पूजा पाठ करते हैं और पूरे उससे मनाते हैं, उत्साह से मनाते हैं। शहर में जो भी होता है आदमी अपने सेल्फिश के लिए करता है, यहाँ पर जो भी है जैसे नेतागण हैं ये हैं वो अपने एक तरीके से मनाते हैं, और उसमें भी आदमी कुछ समय के लिए थोड़ा अपना टाइम दे देता है। बाकी तो जो गांव में है वो मज़ा यहाँ पर नहीं है।
बम्बई में तो सबसे मेन तो यहाँ ये गणपति का त्यौहार होता है। गणपति जो इतना उत्साह से लोग यहाँ उसको गणपति बिठाते हैं, गणपति का उत्साह देख ऐसा लगता है ना कि हम लोगों को भी अपने घर में गणपति बिठानी चाहिए। पूरा यहाँ एकदम मेला जैसा रहता है उस टाइम, जैसे अपने गांव में मेला होता है ना बैसाख के महीने में, और वैसे ही यहाँ अपना गणपति का त्यौहार बहुत ही ज़बरदस्त रहता है।
हमारे गांव में दीपावली पर लोग सभी घर के लोग मिलकर पूजा करते हैं पहले, उसके बाद शाम को तरह तरह का खाना बनता है उस दिन, फिर बच्चे पटाखे वगैरह चलाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं, एक दूसरे घर पर जाते हैं लोग मिलने के लिए, कभी मिठाई वगैरह देते हैं। जब मैं शहर आया तो यहाँ पर मैंने दीपावली का एक नया ही रूप देखा। यहाँ पर लोग छोटे छोटे परिवारों में रहते हैं, पूजा पाठ जो भी करना होता है अकेले अकेले करते हैं। मुझे शहरी दीपावली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर रात तक मनाते हैं और काफ़ी चकाचौंध करने वाली दीपावली होती है यहाँ की।
नरेन, सचमुच सब कुछ बड़ा बेरंग लगता है जब त्योहार के अवसर पर घर का कोई सदस्य घर से दूर होता है। मुझे याद है एक बार मेरे पापा भी दीपावली के समय किसी काम से बाहर गए हुए थे, उनके बिना दीपावली मनाना हमें बड़ा अजीब लगा था तब।
इसीलिए तो कहते हैं कि अपने अपने ही होते हैं, और ऐसे अवसरों पर उनकी याद हम चाहे न चाहे आ ही जाती है।
हाँ नरेन, लेकिन कुछ तो ऐसी बातें होंगी, कुछ तो ऐसे उपाय होंगे जिनके जरिए यादों के इस दर्द को थोड़ा कम किया जा सके।
तो ये बात क्यों ना हम भैजी से ही पूछें?
ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी, और सबसे पहले तो आपको दीपावली बहुत बहुत मुबारक हो।
दीपावली आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो।
धन्यवाद भैजी। और भैजी आज हमारे प्रवासी श्रोताओं को आपके अनुभव की बेहद जरूरत है।
दरअसल आपने तो काफी समय बाहर अलग अलग जगहों पर बिताया है और जिसमें बहुत सा समय ऐसा भी रहा होगा जब आप अपने परिवार से दूर थे। तो क्या कभी ऐसा भी वक्त आया जब त्योहार का समय हो और आप परिवार के साथ ना रहे हों?
भाई नरेन, मेरा जहाँ तक अनुभव है ऐसा समय तो हर प्रवासी भाई की जिंदगी में आता है। अब देखो, शुरुआत में जब हम या हमारे प्रवासी भाई शहर आते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि वो परिवार को भी साथ लाएं। तो कुछ समय तो ऐसा आता ही है जब आपको परिवार से दूर रहना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप त्योहार के समय पर अपने परिवार के पास नहीं पहुंच पाते। तो मेरे साथ भी ऐसा वक्त कई बार आया।
पर भैजी, घर वालों को आपकी याद तो आती होगी।
भाई अगर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर है और त्योहार का समय है तो याद तो आएगी ही ना। लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि भले ही मैं घर पर नहीं हूँ, उनसे दूर हूँ, पर वो मुझे अपने साथ महसूस करें, अपने इर्द गिर्द।
तो भैजी क्या ये मुमकिन हो पाता था?
काफी हद तक। पता है मैं क्या करता था?
क्या भैजी?
उस वक्त गांव में फोन वोन तो नहीं थे, तो मैं अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखता था। कोई ऐसी वैसी चिट्ठी नहीं।
फिर कैसी चिट्ठी भैजी?
त्योहार स्पेशल चिट्ठी, जिसके जरिए मैं अपने घर के एक एक सदस्य से बात करता था, सबको त्योहार की मुबारकबाद देता था, अपनी बुआरी से बात करता था, उससे पूछता था आंगन में इस बार कितने दिए रखेगी, उसको बताता था 5 दिए पुराने वाले घर में भी रख देना, बच्चों से कहता था भाई देखो पटाखे ध्यान से चलाएं, ज्यादा पटाखे न चलाएं, ऐसी ही न जाने कितनी कितनी बातें मैं उस चिट्ठी में लिखता था। और जब वो ये चिट्ठी पढ़ते थे तो उनको काफी हद तक यही महसूस होता था कि दूर होकर भी मैं उनके पास हूँ।
भैजी ये तो बहुत अच्छा उपाय है।
भैजी अपने अनुभव में तो आपने चिट्ठी की बात बताई, लेकिन आजकल तो मोबाइल फोन का भी जमाना है ना?
हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। हम तो चिट्ठी 10 दिन पहले लिखते थे, लेकिन अब तो हमारे प्रवासी भाई बिल्कुल त्योहार वाले दिन घर पर फोन करके परिवार वालों को त्योहार की शुभकामनाएं दे सकते हैं। और हाँ, अगर गांव में फोन की सुविधा का अभाव है तो वो भी मेरी तरह त्योहार स्पेशल चिट्ठियां लिखें और त्योहार को दूर रहकर भी साथ साथ मनाएं।
दोस्तों सुना आपने, आज भैजी ने कितनी अच्छी बात बताई। तो हमारे प्रवासी श्रोताओं, इस बार हम आपसे ये वायदा मांगते हैं कि आप अपने परिवार को दीपावली के दिन फोन जरूर करेंगे, और जो श्रोता फोन नहीं कर सकते वो अपने परिवार के लिए दीपावली स्पेशल चिट्ठी जरूर लिखेंगे, बिल्कुल हमारे भैजी की तरह।
भैजी आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव हमारे प्रवासी श्रोताओं के साथ बांटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
वक्त हो चला है काम की बात करने का।
दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपको जानकारी दी थी दिल्ली के कुछ ऐसे संस्थानों के बारे में जो तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं,
और आज उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताने वाले हैं मुंबई के कुछ ऐसे संस्थानों के बारे में जहां से आप तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों, सेंट डोमिनिक सावियो हाई स्कूल एक ऐसा व्यवसायिक संस्थान है जो कि छोटे छोटे व्यवसायिक कोर्सेज करवाता है। ये मुंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थित है।
आप यहाँ से बेकरी और कन्फेक्शनरी,
केटरिंग मैनेजमेंट,
टाइपराइटिंग,
स्टेनोग्राफी
और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस जैसे कम अवधि वाले कोर्सेज कर सकते हैं।
अगर आप होटल या फिर कैंटीन में रोजगार पाना चाहते हैं,
या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं,
या फिर पीए अथवा सेक्रेटरी की नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डोमिनिक सावियो स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के फोन नंबर्स हैं 02228362633 और 28302323, यानी 02228362633 और 28302323।
दोस्तों, ऐसा ही एक संस्थान मुंबई के पश्चिमी बांद्रा में भी स्थित है जिसका नाम है सेंट एंड्रूज कॉलेज। यहाँ से आप होटल मैनेजमेंट यानी के होटल प्रबंधन का कोर्स कर सकते हैं।
एडमिशन के संबंध में या फिर कोर्स के संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ फोन भी कर सकते हैं। यहाँ के फोन नंबर्स हैं 02226401657 और 09819377556, यानी 02226401657 और 09819377556।
इसी तरह एक और कॉलेज है बेगम जमीला अब्दुल हक कॉलेज ऑफ होम साइंस। यहाँ से आप केटरिंग के साथ साथ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कंप्यूटर कोर्स, पुस्तकालय विज्ञान, सिलाई और ब्यूटिशियन जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन के बारे में आप 02226320631 और 26342300 पर फोन करके पता कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से बता दें आपको 02226320631 और 26342300।
दोस्तों, जितने भी संस्थानों के बारे में आज हमने बात की है वो सभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के अंतर्गत आते हैं। छोटी अवधि के कोर्स होने के कारण आप यहां साल में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं और यहां तक कि अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा तिथि का भी चयन कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी काम की बात। लेकिन अगर अब भी आपके मन में इस संबंध में कोई सवाल है या फिर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं। नंबर है 9197176723। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
भाई अंजलि, किसकी चिट्ठी आई है?
नरेन, चिट्ठियाँ तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं की आई हैं, लेकिन फिलहाल मैं जो चिट्ठी पढ़ने वाली हूँ ये उन लकी विजेता की है जिन्होंने जीता है आज का इनाम।
अच्छा, कौन है वो लकी विजेता और क्या लिखकर भेजा है उन्होंने अपनी इस प्यारी सी चिट्ठी में?
ये चिट्ठी भेजी है मुंबई से अजय पाल भारद्वाज जी ने। नरेन, अजय पाल भारद्वाज जी लिखते हैं कि जब 1973 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया उस समय मेरी आयु सिर्फ 13 साल थी। घर में बड़ा पुत्र होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे छोटे छोटे कंधों पर आ पड़ी। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए घर से दिल्ली आया, पर वहां पर रेलवे स्टेशन पर गुंडों ने मेरा सब सामान लूट लिया। मैं छोटा सा बच्चा रोने लगा। एक आदमी ने मुझसे कारण पूछा। मेरे बताने पर उसने मुझसे मुंबई चलने को कहा। मैं उसके साथ मुंबई चला गया। उसने मुझे एक होटल में काम पर लगवा दिया। तब मुझे रहने खाने की जगह मिली। 3 महीने बाद उसके मालिक ने मुझे बिना पगार दिए नौकरी से निकाल दिया। खैर, तब तक मैं कुछ काम सीख चुका था। मैं दूसरी जगह काम पर लग गया। मुझे गांव बहुत याद आता था। 3 साल बाद गांव आया, माँ और घर वालों से मिला, फिर वापस मुंबई आ गया। शुरू शुरू में तो मेरा मन मुंबई में नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की आदत पड़ गई। अब मैं और मेरा पूरा परिवार यहाँ पर स्थायी हैं। हम अक्सर रेडियो पर आपका प्रोग्राम सुनते हैं और जो पहाड़ों से आए हुए लोग हैं उनसे मिलते हैं। गांव की याद तो बहुत आती है, लेकिन मजबूरी है काम धंधे की। अजय पाल भारद्वाज जी, 13 साल की इतनी कम उम्र में आपको घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए परदेश जाना पड़ा, जानकर बहुत दुख हुआ। नरेंद्र न जाने कितने ही मासूम बच्चे होंगे जिन्हें मजबूरी के तहत घर से दूर शहर की भीड़भाड़ में अपनी रोजी रोटी तलाश करनी पड़ती होगी।
सही कहा अंजलि तुमने, लेकिन काबिले तारीफ है उनका जज्बा जो तमाम मुश्किलों के बावजूद कोई ना कोई मुकाम हासिल कर पाते हैं, और ऐसा ही जज्बा दिखाया अजय पाल जी ने। अजय पाल जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग, और दोस्तों आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
हमारा पता है, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
और अब बारी है आज के संदेशों को सुनने की।
मेरा नाम अनिल है, मैं ग्राम गुरुफली जिला पौड़ी गढ़वाल का हूँ। मैं अपने घर वालों को दिवाली का संदेश दे रहा हूँ। मेरा संदेश यह है कि मैं ठीक ठाक हूँ मम्मियाँ पे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक रहें, और मेरे तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं।
मेरा नाम राकेश है, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने भाई पप्पू के लिए जो जिला अल्मोड़ा ग्राम घंडियाल में रहता है। मैं अपने भाई को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
मैं हूँ रविंदर सिंह, ग्राम अखोड़ी पोस्ट ऑफिस मैचकिंडी जिला रुद्रप्रयाग। मैं अपने भाई साहब जो कि हरेंद्र सिंह लुधियाना में रहते हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। भाई साहब आपको प्रणाम मेरा, और बाकी घर में सब ठीक ठाक हैं। यहाँ पे लवाई मंडाई का कार्यक्रम भी पूरी तरह संपन्न हो चुका है, और आजकल जो हमारे घर में 3 शादियाँ हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपकी शादी की भी घर में तैयारी हो चुकी है, और आप मुझे पूरी आशा है कि आप दीपावली में घर आ जाएंगे, और बाकी आप लोग वहाँ पे ठीक ठाक होंगे, घर में भी सब ठीक ठाक है। नमस्कार, धन्यवाद।
मेरा नाम किशन है और मैं अपने पापा को संदेश भेज रहा हूँ। मेरे पापा का नाम लक्ष्मी नारायण है जो ग्राम कपड़ा जिला रानीखेत में रहते हैं। पापा, मैं दिवाली में घर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आपको दिवाली की मुबारकबाद दे रहा हूँ, और सभी परिवार वालों को दीपावली की शुभकामनाएं।
नरेन, कितना अच्छा लगता होगा ना हमारे श्रोताओं को जब उन्हें अपने ये संदेश मिलते होंगे,
और इस बार तो उनकी ये खुशी दोगुनी हो गई होगी। भाई, दीपावली की बधाइयां जो भेजी हैं उनके अपनों ने।
बिल्कुल नरेन। दोस्तों, आप भी अपना संदेश हमें SMS कर सकते हैं ताकि हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करें।
हमारा नंबर है 9197176782।
और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि आप मिलजुल कर अपना क्लब तैयार कर सकते हैं, तो क्या आपने अपना कोई क्लब तैयार किया? अगर हाँ, तो उसकी गतिविधियों की जानकारियाँ हमें भेजिए, हम उन जानकारियों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि हमारे अन्य प्रवासी श्रोता भी उसका लाभ उठा सकें।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियाँ जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkiore@gmail.com।
और पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, दीपावली के इस शुभ अवसर पर हम करते हैं ये कामना कि दूर हो दुखों का अंधेरा, हो खुशियों से सामना,
धन मिले, वैभव मिले, मिले सुख और समृद्धि। दीपावली के इस अवसर पर यही है हमारी शुभकामना।
जब चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।